The Deputy Commissioner of Police in Amravati today confirmed that the murder last month of a Umesh Kohli was linked to the comments made by the former BJP spokesperson against Prophet Muhammad. The motive behind the murder was seeking revenge, as the victim had circulated a WhatsApp post supporting those disrespectful comments made by the BJP's Nupur Sharma against Prophet Muhammad. That's what the police confirmed today. And the Home Minister has now directed the NIA to oversee this probe into this case too. The main accused is in the police's custody.
The alleged killers seen leaving after stabbing 54-year-old chemist Umesh Kohli on the night of the 21st of June in Amravati. This is his shop where he sold medicine for animals. He was killed soon after he locked up and left for home, waylaid by two men on a motorcycle.
21 June ke raat ko, bhaiya hamesha ki tarah apni dukaan band karke ghar pe ja rahe the. Ghar pe jaate time jis raaste se wo jaate the, wo dukaan ke baju se ek gali hai choti, usme se nikalte the. उस दिन रात को कोई लोग उनका वेट कर रहे थे वहाँ पे, जो आए और उन्हें चाकू घोप के वो चले गए. मुझे फ़ोन आया कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है, तो मैंने जाके देखा तो उनके लेफ्ट साइड में यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था और वो उनकी डेथ हो चुकी थी.
A local BJP leader has alleged that the chemist was killed because he supported BJP spokesperson Nupur Sharma's comments on the Prophet.
उमेश कोहले का जो मर्डर हुआ है उसके कारण केवल नुपुर शर्मा का ही प्रकरण है, इस प्रकार की चर्चा है सभी क्षेत्र में है.
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इंस्ट्रक्टेड द एनआईए टू टेक ओवर द प्रोब. द पुलिस हैज सो फार अरेस्टेड 6 अक्यूज्ड हु आर इन कस्टडी.
हमने 6 आरोपियों को अटक किया है. उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोहले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाहगार है.
The killing brings fresh tensions to Maharashtra with its 2-day-old government.
Law and order में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है. हिंदुत्व एक कल्चर है, ना कि हिंदुत्व मतलब सिर्फ हिंदू है. ये हिंदुस्तान का कल्चर है, सबको साथ में लेके जाना है.
After Udaipur, news of another killing, this time in Amravati, allegedly also over the Prophet insult row. With Bureau Inputs, this is Arman Verma for NDTV.
And the Congress leader Rahul Gandhi, on a tour to his Lok Sabha constituency Wayanad, has held the ruling dispensation responsible for the atmosphere of hate prevailing in the country, alluding to the Supreme Court's severe criticism of the now suspended BJP spokesperson.
You are all aware about what is happening in our country today. The BJP government, the Prime Minister, are spreading hatred every single day. Our institutions that represent the voice of our people are being attacked and captured by the RSS and the BJP.
And India Today called a report by a U.S. government commission on international religious freedom biased and inaccurate. It also further accused the report of having a motivated agenda, lacking in the understanding of India's plurality. We have seen the bias and inaccurate comments on India. These comments reflect a severe lack of understanding of India and its constitutional framework, its plurality and democratic ethos, said the Ministry of External Affairs. Regrettably, the USCIRF continues to misrepresent facts time and time again in its statements and reports in the pursuance of its motivated agenda. Such actions only serve to strengthen concerns about the credibility and the objectivity of the organization, the spokesperson for the MAA added. The report released in June recommended to the Biden administration that they designate India, China, Pakistan and Afghanistan and 11 other nations as countries of particular concern in the context of religious freedoms. The recommendations, however, are not binding on the U.S. government. Meanwhile, I spoke earlier with the brother of Umesh Kohli, the pharmacist, that chemist who was murdered in Maharashtra's Amravati on the night of the 21st of June. I spoke with his brother a short while ago, Mahesh Kohli.
भैया तो हमेशा की तरह घर से निकले थे ना. तो रात को 10:30 बजे के आसपास जब निकले तो वहां से उनके पीछे ही उनका बेटा था, उनकी बहू भी थी 10-15 फीट के अंतर से। आगे जाने के बाद में कुछ लोग गाड़ी, एक बंदा बैठा था, दो बंदे वेट कर रहे थे ऑलरेडी, और उन्होंने जाते ही हमला कर दिया भैया के।
और उमेश कोहली जी उसी समय मतलब देहांत हो गए, कुछ कहा नहीं, लाइक किसी से कुछ आखिरी वर्ड जैसे कुछ था नहीं,
नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मौका भी नहीं मिला क्योंकि उनको वहाँ से उठाना भी मुश्किल हो गया था और वहाँ से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है।
तो महेश जी, इससे पहले कोई डेथ थ्रेट, उनको कोई सस्पेशन हुआ था उसने?
नहीं, उन्होंने कभी कभी नहीं, कभी 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 नहीं बताया उन्होंने ऐसा कि मुझे कोई डेथ थ्रेट आ रहे है या कुछ ऐसा हो रहा है करके, कभी नहीं बताया उन्होंने।
12 दिन हुए हैं, इतना टाइम हो गया था, ये कैसे पता चला फिर? आप मतलब आप क्यों कह रहे हो कि आप ये दोनों केसेस कनेक्टेड है?
नहीं, अभी तो अमरावती के जो सीपी है उन्होंने भी प्रेस नोट दे दी है कि जो प्रथम दर्शनी अवाल है, जो पहली बार जो आया है, उसके हिसाब से ये केस ये हुआ है करके उन्होंने भी बोला हुआ है। ये हमें तो ये थोड़ा सा ये था उस टाइम में कि ऐसी आशंका थी कि ऐसा भी है करके, क्योंकि उनके कुछ पोस्ट थे उन्होंने जो इसमें ये किए थे व्हाट्सएप पे, जो उन्होंने फॉरवर्ड किए थे, उनके कुछ पोस्ट थे एक ग्रुप पे कि जो हमें उस
में जो 12 दिन गुजर गए हैं उस समय आपने किसी के साथ बोला नहीं ये जो मतलब जो आप सोच रहे हो सस्पिशन थे?
वो तो हमने दिया था ना, वो तो ना दिया था हमने, हमने पुलिस में बताया था कि ये ऐसे कुछ पोस्ट है, ऐसा ऐसा इस नाम का एक ग्रुप है और उसमें कुछ भाई के ऐसे ऐसे पोस्ट है, तो आप इसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा देखिए।
आपने बोला था तो?
जी जी जी।
अच्छा, देखो जो उदयपुर में जो केस हुआ था वहाँ पे तो डेथ थ्रेट हो रहे थे, वाज़न्ट अ सरप्राइज अटैक जैसे आप लोग कह रहे हो, एवरीबॉडी वाज़ सो सरप्राइज कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट?
जी,
तो पहले थोड़ा हिस्ट्री था उससे पहले, वैसे नहीं था, तो ये
ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अमरावती में, हाँ, लेकिन अमरावती में कुछ लोग है जिनको ऐसे डेथ थ्रेट आए थे।
अच्छा, ओके। और उसके बाद कोई भी, यू डिडंट हियर एनीथिंग फ्रॉम दीज, जो ये जो तीन लोग थे या उनके साथ तीन और लोग थे, किसी से भी नेवर हर्ड एनीथिंग?
नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस की तरफ से हमें सिर्फ बताया जा रहा था कि दो लोग पकड़े हैं, इनका ये हुआ है, सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा ये है कि कुछ पेपर्स में गलत न्यूज आना शुरू हो गई थी कि ये एक लूटपाट का केस हो सकता है, इस टाइप में कुछ पेपर्स में आना शुरू हो गया था, जिसपे हमने ऑब्जेक्शन लिया इस तरह से नहीं आना चाहिए, और वो लोग उसमें लिखते थे नीचे में कि ये पुलिस प्रशासन ने बोला है करके, तो हमने उसपे थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया था कि अगर आपने नहीं बोला है तो पेपर वाले ऐसे कैसे छाप सकते कि भाई ये, और कुछ पेपर्स में इसमें डाला था कि झटापट हुई थी और वो हालचली में चक्कू लग गया उनको, तो हमने फिर थोड़ा सा उस पर ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि भतीजा बिल्कुल 10-15 फीट या 20 फीट पीछे था, तो ऐसा कुछ भी होता था तो वो तुरंत पहुंच जाता था
उसमें। करेक्ट, ऑफ कोर्स।
हाँ, इसलिए हलचल तो था और हाँ, तो इतना फास्ट आया, मार दिया, चले गए। तो
देखो जो उदयपुर में जो घटना हुई थी वहाँ पे अक्यूज ने फिल्म की थी, उन्होंने उसके बाद वीडियो को सर्कुलेट भी की थी और उन्होंने वीडियो पे बोला था क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब मॉडल ऑपरेंडी जो फर्क, इतना फर्क है ना दोनों केसेस में।
बराबर बराबर।
कि अभी अथॉरिटीज कह रहे हैं कि दोनों लिंक्ड है, बट मॉडल ऑपरेंडी तो अलग है ना?
ऑफकोर्स दोनों अलग है, दोनों अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मेरा भतीजा पीछे नहीं रहता था,
हाँ,
और उन्हें उतना टाइम मिलता था तो शायद कुछ हमारे सामने कुछ और अलग भी एक ये रह सकता था।
तो आप जानते नहीं हो ये जो अक्यूज है, जो अटैकर्स है, दे नॉट मतलब आपके नेबरहुड में से नहीं है, यू डोंट नो देम एट ऑल, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स है।
नहीं नहीं नहीं, अभी एक जो नया आखिरी जो सस्पेक्ट पकड़ा है वो एक वेटरनरी डॉक्टर है, ऐसा उन्होंने जो बोला है, जिसको हम जानते हैं।
अच्छा, तो हम उनको जानते हैं। क्या हिस्ट्री था आपके साथ, मतलब वो जरा प्रोफेशनल हिस्ट्री, आप जानते थे, कैसे जानते थे आप?
नहीं नहीं, वो कैसा है, वो हमेशा शॉप पे आते थे, दवा लेते थे हमारे से।
ओके, सो यू डिड नो वन ऑफ द अक्यूज? ओके,
हाँ, वो अच्छी तरह से जानते हैं, और वो जो जिस ग्रुप में भैया ने ये सब मैसेज डाले हैं उसी ग्रुप में वो भी थे।
ओके, तो ही वाज आल्सो इन दैट ग्रुप, ऑलराइट, दैट्स अ
क्वेश्चन।
आखिरी में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना पॉलिटिसाइज हो रही है, आप क्या कहना चाहते हो अगर कोई सुन रहा है आपकी इंटरव्यू को, और क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि अब ये केस रिजोल्व हो जाएगी क्योंकि NIA भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है?
जी, NIA नो डाउट कॉन्फिडेंस आया है। हमें तो पहले यही कहना था कि भाई कम से कम हमें रीजन बताया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि जो मेरा भाई इतना पोलाइट था और एक व्यापारी कभी भी किसी भी चीजों में नहीं जाता है और उसमें भी उसका नेचर जो था वो बहुत पोलाइट था और वो ऐसे आदमी को क्यों मार सकता है। और हमें तो ये इस बात का भी बुरा लग रहा है कि ऐसे केस में हमारे देश के गृह राज्य मंत्री को आना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। तो ये तो और एनआईए आने के बाद में हमें रीजन पता चलता है, तो ये तो बड़ा उसमें बुरा भी लग रहा है कि पहले ही ये पता चलता तो ज्यादा अच्छा हो जाता था।
आपके भाई बहुत पोलाइट थे, वो मतलब पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व थे, ही डिडंट हैव दिस व्यूज?
नहीं, हम लोग कभी किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग रिलेटेड नहीं है।
और ये जो फॉरवर्ड रैली में फॉरवर्ड रखी गई थी उनके फोन पे, ये व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड जो आज सरकार पुलिस कह रही है कि बिकॉज ऑफ हिज फॉरवर्ड ही वाज किल्ड, वो फॉरवर्ड उन्होंने किया था अपने आप?
देखिए हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे फॉरवर्ड करते हैं ना,
हाँ,
कि भाई कोई चीज हमारे पास में आती है और हम लोग उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, नीचे कोई लिख देता है कि हिंदू हो तो उसे फॉरवर्ड करो, तो हम प्लस में आ जाते हैं और हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक नॉर्मल फॉरवर्ड जैसे होता है कोई भी इंसान, क्योंकि उसे वक्त ही कम मिलता था, पूरे दिन शॉप में ये सब ये करके तो ये सब बैठा है, तो एक आप 5-6 फॉरवर्ड कर दिए, इसको कर दिए, उसको कर दिए, तो कभी ये सोच नहीं है कि भाई हम जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं
मतलब खुद अपने आप ने लिखा, खुद अपने आप नहीं बना?
नहीं,
में सर आप कह रहे हो ना, देखो ये फॉरवर्ड आते हैं वहाँ पे लिखा जाता है कि अगर आप हिंदू हो तो फॉरवर्ड करो, तो आपको क्या लगता है मतलब ये जो माहौल अब है हमारे देश में उसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं?
नहीं, कैसा है इस तरीके से माहौल बनना ही गलत बात है। उसमें भी जो आज ऐसे किसी धर्म का इसका माहौल बनना ही खराब है। और कैसा होता है कि जो पर्सन या जो फैमिली उस इंसान को गवाती है उसको ज्यादा तकलीफ होती है। क्या होता है कि कोई भी इंफ्लुएंस में आके किसी को भी ऐसे मार दे तो उस परिवार पे क्या बीतती है, उसके पीछे कितने लोग रहते हैं जिनपे उसकी जिम्मेदारी रहती है, और वो कितना मुश्किल हो जाता है उस परिवार को उसके बाद में ये करना। और अपना गवाना, अपना किसी अपने किसी नजदीक को, अपने किसी घर के सदस्य को गवाने का दुख क्या होता है, ये तो वही जान सकता है जिसने अपने घर के किसी चीज को गवाया है। तो
हमारे लिए और दुर्भाग्य। थैंक यू सो मच, फिर भी आपने हमारे साथ बात की और माय कंडोलेंसेस आपको और आपकी एंटायर फैमिली को।
Alright, so one more killed allegedly for supporting Nupur Sharma's comments. The NIA to investigate this now, a larger terror plot to emerge. Who's responsible and where does this end? Joining us on Left, Right and Center, KP Raghuvanshi, former Additional Director General of the Police, Law and Order Maharashtra, former Chief of the ATS. We have Devjani Bhattacharya, political analyst who supports the BJP. And we have Supriya Srinath, the National Spokesperson of the Congress. Mr. Raghuvanshi, to you first, sir, how do you explain this 12-day gap between the authorities making a link between what happened in Amravati and Udaipur, given of course that there are so many differences, as the brother pointed out, between the two cases?
Look, when any case is registered, after the registration of FIR, police try to investigate the case by collecting the evidence and try to find motive. Many a times it so happens that motive may come in the light immediately. Like in Udaipur case, the people who were the rather criminal who committed that heinous crime, they themselves prepared the video and flashed it. In many cases, rather most of the cases, that it takes time. When the investigating officer, investigating agency conducts the investigation, collect the evidence to the criminal and try to find out the motive, then only they can come to the conclusion that what really is the reason and how exactly it has happened. So 10-12 days case is not a very long period when you can say that they have taken a long period to find out the motive.
All right. So let's move on to the next. Where does this end? Can we expect more plots like this to emerge? And who started it? Who should be responsible? Devjani Bhattacharya, we have Rahul Gandhi saying, putting, you know, the blame at the door of the ruling dispensation. For now, for example, Prime Minister Modi is still to even mention or speak about this today.
Yes, whatever is happening is very unfortunate. because no one in our country has the right to take law in own hands. Anything that is done violating the laid down format of law is a crime. And except for self-defense, our law doesn't permit a murder. No one can murder any other person except for self-defense as per law. So every crime, every murder would be investigated as per
every
law.
Every action someone should be held accountable for that action. Similarly, will anyone be held accountable for Nupur Sharma's comments apart from her suspension?
That is the case is sub judice. I think law will take its own course. It will be decided. The police is acting. The courts are, this case is already sub judice. So things would be done as per the laid down format of law. That much only I can
Supriya
say.
Srinath,
every matter.
The law will act in the case of Nupur Sharma.
That I want to say something specifically, and I'm saying this for the consumption of your viewers. Please understand what is happening in India today. Nupur Sharma is a mere symbol, is a mere stooge of what we are witnessing as a nation. Here was a official spokesperson of the BJP. She said what she did. The BJP then calls her fringe element, wants to wash her hands of it. When the Supreme Court makes a makes an observation, the entire party gets together to defend her. So either she's fringe element, or she's one of your own whom you're defending. That's part one. Part two, and this is a very important part, please listen to this. Investigative journalists and our own research has shown us that Riyaz Attari, the main accused in the Udaipur case, who's actually now behind bars, was a BJP member. He had links with Mr. Gulab Kataria, then Home Minister of the BJP, and he was called the BJP member by one of their official BJP officials in Udaipur, Mohammad Tahir. Why is the BJP not clarifying the air on that? I also want to, with equal vigor, point out one very important thing in the next 10 seconds. There was a fake video manufactured by a television news channel which tries to show that Rahul Gandhi is forgiving the Udaipur perpetrators of crime. He was actually forgiving the SFII members who had vandalized his office. That fake video is tweeted by leaders of the BJP, including Rajyavardhan Rathore in Rajasthan, and some of their MPs and MLAs. We flagged it, they deleted it. The damage is being done. Who's vitiating the environment?
The BJP did
and
hold.
One last thing. You are actually posing a threat to Rahul Gandhi's life by posing a fake video regarding him. I want to understand. Are you telling me that Rahul Gandhi is supporting terrorists in this country? He's not. That's a fake video.
So retweeting, in this case, Supriya Srinath, I haven't looked into the details, but you're saying BJP leaders retweeted that tweet.
No, they did not retweet. They tweeted that video.
They tweeted. I'll stick to the first point that you raised about those pictures. Embarrassingly, Debjani Bhattacharya, for the BJP, those pictures have surfaced. One of the main accused with senior BJP leaders in Udaipur. The BJP has held a press conference. They're denying this, saying that had anything to do with their party. But your quick response, Debjani Bhattacharya, to the vitiation of the atmosphere right now. Is it enough to just say the law will take its course? Does the Prime Minister perhaps need to do more? You have the opposition's presidential candidate speaking in Hyderabad, where the Prime Minister is, where the BJP National Executive is taking place, asking why is the Prime Minister silent on the Nupur Sharma controversy? Already not one case, two cases of murders the authorities say are connected in response to her comments.
Yeah, this is where I disagree with you. The law must act as per the format for everything, even to understand and diagnose who is vitiating the environment. This is a very matter of concern, I agree. However, this has to be detected, who is what, whether the terrorist was really a BJP member or not. everything should come out. Rajasthan Police is investigating, and all the concerned parties must investigate, take out the evidences, place them in front of the court, let the courts evaluate them and judge. And that is the laid down format of law. India is a country which is ruled by law, and law as per constitution. So we should stick to that. And we should have faith. It is not what a single person says or what a single
woman. All right, Ms. Srinath, also before we wind up, just also comment about, the MEA responding to that U.S. report, saying, calling it a motivated agenda that doesn't understand India's plurality. And it's basically saying they're misrepresenting facts in pursuance of a motivated agenda.
Quite frankly, I will just say in one line for the MEA and then I will answer a direct question that is being posed here. The MEA is making a mockery of India's vibrant democracy at a, international level. They should stop doing what they are doing because they are making a fool out of us. They are making a mockery of India's democratic processes, our vibrancy, our intellect. So let's forget about what the MEA is doing. But I will say, Ms. Devjani wants me to say that the law will take its own course. Absolutely, it should. I agree with you. But there are explicit pictures linking these terrorists to the BJP. And I'm asking a direct question. Why are your leaders spreading fake news on social media platforms? Why are they stoking communal violence? Why are they spreading misinformation and linking Rahul Gandhi to an extremely dangerously communal fervor? Are you putting his life in danger? Are you playing with the communal fabric of this country?
The law will take its own course. The law will take its own course. Let me get in KP Raghuvanshi, sir. Your response to the fact that yesterday the Delhi police really got hauled up by the Supreme Court saying that the law is not taking its course and there are different treatments, a red carpet rolled out, kid glove treatment for one person, which is Nupur Sharma, as opposed to other cases where an FIR is filed and the person is arrested immediately.
Whatever I could read through the press or I could see in the TV, yes, I also feel that the response of the Delhi police has been slow. But since now that FIR has been registered, I am sure Delhi police is a very professional organization. When they have registered the FIR, they will definitely investigate the case. And the case should be taken to a logical conclusion. Yes, I totally agree. When we are investigating the case, it should not only be impartial, it should not only be truth to find out, but it should look also impartial. And the facts should be convincing to all. Now, in this case particularly, somewhere, this is the impression which people are gathering that perhaps the police has been slow in their response.
All right. Thank you all for joining us tonight. Supriya, quick, you have a point to make. 30 seconds, please. Go ahead.
Can you imagine even before the judge gave his judgment in the Patiala High Court on Zubair today, a news agency had leaked what the judgment will be 3 hours before the judgment came? This is the banana republic we are going to make this country and they expect us to be silent spectators. This is on Mr. Modi and this is on Mr. Shah and this is on the BJP and what they're making of this country.
All right. Thank you so much, all of you, for joining us. Go ahead, ma'am. Quick, 30 seconds to you.
So I want to say to Supriya ji is whatever allegations she's raising over the media, she must make it go as per the format of law. Everything.
All right.
All right. Thank you all. Thank you all again.